कैसा चल रहा है पुरुषार्थ, श्रीमावेन संतोषजनक नहीं, आपका संतोषजनक, बहनों का पुरुषार्थ में यही जानना और पूछना ठीक है ना, संतोषजनक पुरुषार्थ, क्योंकि हरेक का अपना अपना लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य अनुसार हरेक का पुरुषार्थ होता है, उस पुरुषार्थ से आत्मा संतुष्ट या असंतुष्ट होती है। तो हमारा पुरुषार्थ संतोषजनक चल रहा हो। मैं आज पहले एक दो छोटे छोटे अनुभव सुना देता हूं अभी के। लक्ष्य है हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानते चलें। जब हमारा चित्त शांत हो जाता है तो क्या क्या होता है? तो पहले हम गाम देवी थे, तो वहां क्लासेस, हमारा लक्ष्य होता है सबके मन को हल्का करना, बाबा को समर्पित करो, अपनी शक्तियों को पहचानो, बाबा साथी है इसको पहचानो। तो एक भाई आया क्लास के बाद, आता रहता है यहाँ, बहुत पुराना है, कहा मुझे बहुत टेंशन थी और टांगों में दर्द रहता था, एकदम ऐसा हुआ मैं हल्का हो गया और टांग दर्द भी गायब। मैं भी सोचता ही रहा कि देखो मानसिक स्थिति का इफेक्ट कितना जबरदस्त होता है। आजकल दुनिया में टेंशन भी बढ़ रहा है, दुख भी बढ़ रहा है। मैं तो हर बार जब जाता हूं तो दुख में वृद्धि वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, और एक बात देखने में आती है कि वो दुख उन्हें बाबा के पास ले आता है। तो कहा तो नहीं जा सकता उन्हें, पर बात यही होती है, किसी ने पति खोया, उनके शब्दों में तो भगवान मिला, वो अभी इस बात को नहीं समझते, दुखी रहते हैं हमारे पति की मृत्यु हो गई। छोटी आयु की माताएं मिली जिनको, एक छोटी बच्ची, पति की मृत्यु हो गई तो बाबा के पास आ गए, दुखी तो थे परंतु सुख भी था कि चलो भगवान तो मिल गया। तो संसार में ये दिखाई दे रहा है कि दुखों की वृद्धि बहुत हो रही है और इससे आत्माएं बाबा के पास आ रही हैं। एक दूसरा बहुत ही अच्छा अनुभव ये, हम क्लास में क्षमादान और क्षमा याचना कराते हैं कि जिस जिसने आपको कष्ट दिया हो किसी भी तरह का, जिससे आपके मन को दुख, कष्ट, बहुत निराशा, कुछ भी ऐसा हुआ हो, उन्हें क्षमादान दे दो। तो हम तो जनरल में कराते हैं, सबको कराया, तो एक भाई दिन में कराया था, ये बात अभी की है बस, वर्षों तरसों की, तीन चार दिन पहले ही दिन में कराया। शाम को वो बैठा था तो अपना अनुभव सुना के गया, कहा मैंने अपने एक फ्रेंड को बहुत सारे पैसे दिए थे, जरूरत थी उसको उधार दे दिए, ऐसे ही दे दिए, भाई दे देना बिना ब्याज के, सिंपली फ्रेंडली। अभी उसकी स्थिति ये थी, क्या हुआ उसको, वो देने के मूड में नहीं और बात भी नहीं करता, फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई। आजकल सभी को ये बात जाननी चाहिए, पैसा देना माना फ्रेंडशिप खत्म करना, हाल बहुत बिगड़ता जा रहा है संसार का। तो कहा वो मैं फोन करूं तो फोन उठाए नहीं, आखिर मैंने फोन करना ही छोड़ दिया था, मैं सोचा चलो भाई पिछला हिसाब किताब होगा, चुक तो हो गया। आज जब क्षमा दान की बात हुई तो मैंने उसको क्षमा कर दिया और दुआएं भी दी साथ में, सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। तो क्या होने लगा फटाफट, देखो ये अनुभव कितना एक गहन साइकोलॉजी को, श्रेष्ठ शुभ भावनाओं के प्रभाव को दिखाता है। दोपहर से शाम तक उसके 10 SMS आ गए, मेरे से जल्दी बात करो। ये भट्टी में था तो सोचा अब SMS पढ़े भी नहीं, आते जाते बाद में करेंगे, सबको था कि भाई अपने मोबाइल बंद ही रखना है भट्टी के दिन। 3 दिन की पूरी भट्टी दिवाइयों की। तो शाम को, रात को जब भट्टी के बाद उससे बात की तो माफी मांगने लगा, वो जिसको माफ किया वो फॉर्म माफी मांगने लगा। इसने पूछा कि भाई तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठाते, आज क्या हुआ है, तुमने 10 SMS कर दिए। तो इसने बताया कि दोपहर से मुझे बेचैनी हो गई, अंदर में बेचैन हो गया मैं, और सोच रहा जल्दी आप मुझसे बात कर लें, अब जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे शांति जैसी मिल रही है, भाई मैं आपके पैसे लौटाऊंगा। तो ये एक इतना सुंदर अनुभव था उसका, उसको था वो लौटाए न लौटाए, पर एक सुंदर अनुभव क्षमा दान देने का, कि वो बेचैन हो गया कि नहीं मैंने गलती कर दी, मैंने फ्रेंडशिप भी तोड़ दी, उसका फोन भी अटेंड नहीं करता, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। तो हमारी शुभ भावनाएं बहुत बड़ा काम करती हैं। एक बात मैं और याद दिलाऊं आपको, आप सब कर ही रहे हैं उसको, संसार में दुख तेजी से बढ़ रहा है, हमारा क्या कर्तव्य, क्या करना है हमें, सकास देते चलना। इसको हम रिवाइज करते रहे अपने अंदर, ये बात हल्की न हो जाए। और मैं ये कहूंगा कि जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो लक्ष्य बना लें कि सारा दिन ही अधिक से अधिक, जब भी याद आए आधा मिनट भी, एक मिनट भी हम सकास दें आत्माओं को। न जाने कहां हमारी सकास काम करेगी, ये हमें पता नहीं चलेगा। ये सूक्ष्म गॉडली मिशनरी काम कर रही है, ये बाबा जाने। हम सकास देंगे, हमारे वाइब्रेशंस को कहां वो यूज कर लेता है, किसके कष्ट समाप्त करा देता है, किसको उससे मदद करा देता है, ये उसका काम। तो हम ध्यान पूर्वक सकास देने की सेवा को बढ़ाते चले। साथ ही साथ पिछले साल हम सब ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, याद हो आपको, नो इफेक्ट। इस बार बाबा ने क्या कह दिया, नो टेंशन, वही है लगभग जुड़ा। तो हम अपने को ज्ञान स्वरूप बनाते चले। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे चारों सब्जेक्ट का बैलेंस हो जाए जीवन में, ज्ञान स्वरूप बनाते चलें, ज्ञान हमें स्मृति में रहे। कलयुग का अंत है, हमारे साथ कौन आत्माएं हैं, हाँ ये बात स्मृति में रहे, चाहे हमारे परिवार में, चाहे किसी माता के बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, फ्रेंड्स हैं, जहां आप काम करते हैं वहां 2-4-10 लोग आपके साथ हैं, वो आत्माएं हैं जिनसे हमारा सबसे ज्यादा कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए नो टेंशन, हल्का रहना है, चुक्तू करना है, ज्ञान स्वरूप होकर कुछ बातों को स्वीकार करते हुए हमें नो टेंशन की स्थिति में रहना है। नो इफेक्ट, नो टेंशन, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, शिकायत भी नहीं किसी की। क्या शिकायत करेंगे, हमने कर्ज लिया हुआ है, उन्हें देना पड़ रहा है। तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्मृति में रहे, क्योंकि विनाश काल में बहुत बड़ा काम करेगी हमारी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, ज्ञान स्वरूप स्थिति पहला। इसी के साथ दूसरा जुड़ेगा स्मृति स्वरूप, हमें स्मृति रहने लगे ये संसार खेल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ इस ड्रामा में नहीं है, संपूर्ण न्याय हो रहा है, ड्रामा में संपूर्ण न्याय हो रहा है, अन्याय कहीं नहीं है, हमें दिखाई जो देता है वही सत्य नहीं है, ठीक है ना, सत्य उसके पीछे कुछ और भी होता है। हम तो देखेंगे इसने पाप किया ये बड़ा सुखी है, ये सज्जन आत्माएं हैं ये बड़े दुखी हैं, ये तो हम केवल वर्तमान में देखते हैं, लेकिन यदि हम त्रिकालदर्शी होकर देखते हैं तो हमें ठीक समझ में आ जाता है कि सब कुछ एक्यूरेटली चल रहा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप स्थिति है। हम ज्ञान स्वरूप होने का आदत डालें कि सबके जाने का समय है, इसलिए सबके कड़े हिसाब किताब भी चुक तू करने का समय है, केवल हमारे साथ ही नहीं वो खुद भी अपने हिसाब किताब को चुक तू कर रहे हैं। आज एक युगल मिले हमसे, यहाँ आए हमारे धार्मिक सम्मेलन में, 2 मास से ही ज्ञान लिया। देखो कहानी, भाई मिलिट्री में कर्नल, उसका एक ही लड़का, वो मेजर था यंग, जम्मू कश्मीर में उसकी मृत्यु हो गई, वहां तो टेररिस्ट कुछ भी करते हैं, सुरंग बिछाई हुई थी, वहां से जब वो गुजरे विस्फोट कर दिया, तत्काल मृत्यु हो गई। एक ही लड़का था, बस दो, ये एक लड़का, हम समझ सकते हैं उसके दुख, मां बेचारी, बाप तो मिलिट्री में होने के कारण बहुत कुछ देखता जानता, उसने तो अपने को मैनेज कर दिया, सहज भाव में आ गया, पर उसको भी नींद की प्रॉब्लम हो गई। और ये माता जी, इसका तो ऐसा लगा कि जीवन अब रोने के लिए ही बच गया, बार बार रोना, बार बार रोना, बात बात में रोना। एक माता ऐसी अभी हमें मिली बेंगलोर में, उसके पति की मृत्यु हुई 14 मास पहले, तभी ज्ञान में आए थे ये लोग, बस वो रो ही रही है, 14 मास हो गए, रो ही रही है, उसको सब समझाते हैं, कहती मैं सब समझती हूँ, वो आत्मा थी, शरीर छोड़ के गई, मृत्यु होनी है, सब ज्ञान मुझे अभी रहता है, लेकिन इमोशनल इतनी हूँ कि मेरे से रहा नहीं जाता। अब देखिए अंदर का गुस्सा क्या करता है, एक 14 साल का लड़का, उसको मारती पीटती रहती है, अपनी टेंशन उस पे उतारती है। मैंने समझाया, इतना तो समझदार एक माँ को होना चाहिए कि उसका एक ही 14 साल का लड़का, उसको तो प्यार दो। देखो प्यार भी खत्म कर लिया अपने अंदर का, माँ के मन में बच्चों के लिए कितना प्यार होता है, लेकिन पति के जाने के बाद वो भी खत्म कर लिया। रोज तो एक संकल्प करती है, मैं मर जाऊं, मैं पति के बिना जी नहीं सकती। अब देखिए बच्चा भी खत्म गया, उसकी बुद्धि में बच्चे के लिए कुछ नहीं, तो मरो या जियो कुछ भी करो, मैं भी चली। ये सब क्यों हो रहा है, पाप कर्म, उनको तो नहीं कहा जा सकता, पर कड़े पाप कर्म, यही कर्नल की बात। वो मां बहुत दुखी, रोना ही रोना, तो 2 मासी, दो ही मास हुए बस, तभी ज्ञान में आए, दुख उनको ज्ञान में ले आया। तो देखो ये सब कर्मों का खेल, संबंधों के कष्ट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमारी सकास की संसार को बहुत बहुत जरूरत है। हम कहीं भी ढीलेपन में, अलबेलेपन में भूल न जाएं। इससे हमारा पुरुषार्थ भी तेज होगा और दूसरों को भी बहुत मदद मिलेगी। तो पहला ज्ञान स्वरूप हम ज्ञान के चिंतन को बढ़ाया करें। सवेरे से जो मुरली हम बाबा की सुनते हैं उसका चिंतन हमारे पास होना चाहिए। ये नहीं सुनी और भूल गई। एक है सुनते हुए उसका रस, उसका सुख, उसका बल आत्मा में समाता चले, ये बहुत आवश्यक है। सारा दिन हम कहीं बहुत व्यस्त भी रहें, भूले रहें बाबा के महावाक्यों को, तो मुरली सुनते समय उसका सुख, रस और बल तीनों आत्मा में भरता चले, ये हमें ध्यान रखना है। तो ज्ञान का चिंतन आत्मा को बल देता है, बहुत बल देता है। योग, पहले भी हम एक चर्चा कर चुके हैं, एक सिंपल प्लान हरेक व्यक्तिगत रूप में योग का बना सकते हैं अपना अपना। क्या? जितने तरह के कर्म हम करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। मान लो आपने 10-12 लिस्ट बना ली कर्मों की। कुछ कॉमन कर्म है हमारे, भोजन खाना, स्नान करना, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, ऐसे कुछ कॉमन कर्म है। माताओं को घर में भोजन बनाना है, और कुछ काम करना है, कपड़े धुलाई करनी है, घर की सफाई करनी है, एक लिस्ट बनाओ। बाबा की मुरली सुननी है, अमृत वेले आप घर से और यहाँ पैदल आते हैं, इन सब कर्मों में अलग अलग अभ्यास फिक्स करो। माताएं भी करेंगी ये काम। कौन कौन बहनें पैदल आती हैं घर से शांतिवन तक? पैदल आना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है पैदल वालों को? एक चीज फिक्स कर लो, जब मैं घर से चलूंगी तो संकल्प करूंगी बाबा मेरे साथ है, मैं लाइट हाउस हूँ, मुझसे किरणें फैलती जा रही हैं। जिनके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं वो भी निश्चित कर लो, गाड़ी में बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे, ये अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या मैं एक महान आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है। मैंने एक उदाहरण दिया। भोजन पर क्या अभ्यास करेंगे? याद है माताओं को? बोलो, भोजन पर किसी को याद नहीं? क्या? हाथ तो उठा दिया, पर क्या करें? माताएं भूल जाती हैं। मैं देखता हूँ हमारी एक क्लास में यदि 800 माताएं बैठी हैं और मैं वो बात बताता हूँ तो 8 ही करती हैं बस। 800 में से 8 क्या है वो बात? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। माताओं ने पहली बार सुना, पहले भी सुना है? सुना है, अब शुरू कर लो जरा, नहीं तो भगवान भी कहेगा कि सुन सुन के करते ही नहीं। कर लो, शुरू करो। भोजन बनाते हुए बार बार याद करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सुंदर अनुभव होंगे। अनुभवों को बढ़ाना है, जीवन को अनुभवों की खान बनाया जा सकता है। छोटे छोटे अनुभव बहुत अच्छे अच्छे विश्वास और भावनाओं के साथ हम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बेंगलोर में था ना लास्ट में, अभी 3 दिन पहले, तो लास्ट क्लास में थोड़ी सी माताएं बैठी थी, भाई भट्टी तो भाइयों की थी, तो मैं हीलिंग के रोगों को ठीक करने की ये 2-3 विधि सिखाता ही हूँ। जो माताएं कर लेती हैं उनका बेड़ा पार। एक माता की टांगों में बहुत दर्द, बिचारी से नीचे भी न बैठा जाए, चलना भी मुश्किल। उसने क्लास सुनते सुनते वहीं प्रैक्टिस की और ठीक हो गया। मैं गाड़ी में कहीं जा रहा था, जाते जाते सुना रही थी, सबको सुना रही, मेरा टांग दर्द ठीक हो गया भाई, मैंने ये प्रैक्टिस अभी कर ली है। तो माताएं ध्यान दें, आप सबके पास बहुत बड़ी शक्ति है, स्मृति लाएं। नहीं तो क्या होता है, जब समस्याएं आती हैं तो समस्याओं का स्वरूप बन जाते हैं। मेरे पास आज दो फोन ऐसे आए माताओं के, जिसमें उनकी समस्याओं का कहीं भी हल नहीं हो रहा है, न ज्ञान योग से, न हमारे प्रयोग से, न डॉक्टरों से। ऐसी स्थिति आ गई कि उनकी समस्याओं का हल ही नहीं हो रहा है। तो मैंने उन्हें बताया, भाई असली कारण तो आपकी समस्याओं का एक ही है, समझ गए ना कौन सा? एक तो विकर्म बहुत, दूसरा बाबा के बनने के बाद जीवन को क्या बोलो आगे, व्यर्थ में ज्यादा बिताया है। जिन्होंने बाबा के बनने के बाद जीवन व्यर्थ में ज्यादा निकाला है ना, उनके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तो कहीं भी सफलता नहीं होती। एक भाई का फोन था आज सवेरे, बिजनेस में उसके गिरावट गिरावट गिरावट, उसने सब कुछ कर लिया, क्यों गिरावट हो रही उसकी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसको सिखाए थे कुछ अभ्यास, तो वो उससे होते नहीं, बिल्कुल ये भी उससे नहीं होता कि वो अपनी दुकान पर बैठकर सोच ले मैं एक महान आत्मा हूं, कहा मेरे को होता ही नहीं, क्या करूं। और ज्ञान में बहुत साल से, 15-16 साल से, कारण मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि सभी जो यहां बैठे हैं इन चीजों से बाहर निकल जाएं। कारण यही कि जीवन का लंबा काल व्यर्थ में बिताया है। सभी ध्यान दें, विनाश काल बहुत ही खतरनाक काल होगा, उसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। चारों ओर हाहाकार के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ऐसे में हमारे पुण्य की पूंजी, हमारी श्रेष्ठ स्थिति हमें काम आएगी, बाकी कुछ काम नहीं आएगा, न पैसा। देखो मनुष्य आज पैसे के लिए सबसे ज्यादा पाप कर रहा है दुनिया में, आप भी सुनते होंगे, मैं तो ज्यादा सुनता हूँ, लोग मिलते हैं तो पैसा पाप का बीज बनता जा रहा है आजकल। तो पैसा तो सुख देगा नहीं, पद पोजीशन, परिवार संबंधी, वो भी काम नहीं आएंगे। क्या काम आएगा? पुण्य कर्म और श्रेष्ठ स्थिति। इसलिए मैं माताओं को कह रहा हूं, अभ्यास शुरू कर दो, कर सकते हैं, अपने कर्मों को 10-12 भागों में बांट लो, अलग अलग कर्म में अलग अलग अभ्यास। भाई घर से चलना है, ये अभ्यास करना है, भोजन बनाना है, ये अभ्यास करना है, स्नान करना है, ये अभ्यास करना है, और जितने भी काम हैं उनमें अलग अलग प्रैक्टिस। भाई लोग ध्यान दें, हो सकता है करें आप ये सभी। जिन जिन भाई भाइयों का संबंध मजदूरों से विस्त्रियों से, वो ध्यान दे, कुछ अभ्यास किए जा सकते उनके कॉन्टेक्ट में रहते हुए। आत्मिक दृष्टि, ये बहुत सुंदर बात है, बाबा मेरे साथ है। और तीसरा कोई भी स्वमान, तीन अभ्यास आप ले लें, जब आप काम करा रहे हैं बीच बीच में इनका अभ्यास करते रहें, तो मजदूरों का इफेक्ट आप पर नहीं आएगा, आपके वाइब्रेशंस उनको जाएंगे। एक लक्ष्य बना लें सभी, जो भी हमारा कर्म क्षेत्र है उस पर हमें वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं। सभी लिखो और करना है ये काम। जो भी जिसका कर्म क्षेत्र है, किचन में है तो वहां पर, कंस्ट्रक्शन में है तो वहां पर, ज्ञान अमृत में है तो वहां पर, लिफ्ट में है वेदपाल भाई, लिफ्ट में, जहां भी आप हैं, अपने कर्म स्थान पर सबको वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं। कंस्ट्रक्शन वाले इंजीनियर बैठे हैं ना, सब लक्ष्य बनाओ, हम मास्टर क्रिएटर हैं। विनोद भाई, आपका ऑफिस भी बड़ा है, वाइब्रेशंस क्रिएट करें, लक्ष्य बना लें, ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं कि वहां जो भी आए, जो भी वहां काम करे, उसको इजीनेस फील हो, भारीपन नहीं, सरलता, सहजता। वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए कौन से अभ्यास करेंगे बोलो? मैं अर्जुन भाई, मैं और बोलो, मैं नायब। एक तो प्योरिटी से संबंधित स्वमान, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, पवित्रता की देवी हूं। दूसरा, नहीं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं जिसे किरणें फैले हमसे। तीसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तीन स्वमान ले लेंगे। चौथा भी ले सकते हैं, मैं विघ्न विनाशक हूं ताकि कर्म क्षेत्र पर विघ्न न आए, खत्म होते जाए। ये चार स्वमान लेकर रोज जब आप अपने कर्म क्षेत्र पर जाओ बैठो, जाते ही कम से कम तीन बार बहुत अच्छी तरह ये अभ्यास कर लेने हैं। बीच बीच में भी करेंगे तो उस स्थान के वाइब्रेशंस बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे। जहां आपको सेवा करनी है, मान लो किसी को कोर्स देना है, कोई बैठते हैं कहीं, बाहर के भाई बहने आते हैं, उनको गाइड करते हैं, वहां के वाइब्रेशंस पावरफुल करो ताकि जो भी वहां प्रवेश करे उसको लगे कहां आ गए, कोई अलौकिक जगह आ गए, कोई सुखदाई जगह पर आ गए, कोई शांति के स्थान पर हम आ गए हैं। बाबा ने मधुवन के लिए ये बात बहुत कही है, शांतिवन में ये बात अभी करनी बाकी है, मधुवन में अभी भी है, ज्ञान सरोवर में तो बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति कल मिल रहा, बुजुर्ग, उसके भांजे बड़े हैं, वो भी बहन के लड़के, वो भी 60 साल के बाहर के हैं, वो उनको 20 साल से कहते आते चलो एक बार चलो, और वो क्या कहते, तुम हमारा खाना ही नहीं खाते, हम क्यों जाएं तुम्हारे पास। देखो अभी आए तो कल मेरे से मिला है चलते चलते, तो मैंने पूछा कैसा लगा यहाँ, बुजुर्ग है 80 साल के भी ज्यादा, कहता भाई यहाँ का अनुभव तो गुंगे के गुड़ जैसा है कि गुंगे ने गुड़ खा लिया, अब बताए कैसे का, हम तो इतने आनंद में हैं कि उस आनंद का वर्णन कैसे करें। तो ऐसे वाइब्रेशंस हम सबको बनाने हैं। देखिए मुख्य काम तो ऊपर से होगा, बाबा से, लेकिन हम एक काम की शुरुआत करें, हम बहुत अच्छे वाइब्रेशंस शांति वन में जहां तहां बनाएंगे, माताएं अपने घरों में बनाएंगी, तो ऊपर के वाइब्रेशंस को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे ना। सिद्धांत यही है, हम अपने स्थान पे थोड़े से भी अच्छे वाइब्रेशंस बनाएंगे तो ये वाइब्रेशंस बाबा के वाइब्रेशंस को ज्यादा आकर्षित करेंगे और वाइब्रेशंस बढ़ते ही जाएंगे। धारणाएं तीसरा सब्जेक्ट है हमारा। सभी को 5-6 धारणाओं पर बहुत ध्यान देना है, आप सब उनको जानते हैं। ये ऐसी धारणाएं हैं जो हमारे जीवन में अलौकिकता भरती हैं, आत्मसंतोष देती हैं। पहली धारणा, संतुष्टता, निरहंकारिता, मैंपन का त्याग, सरलता, साक्षी भाव बहुत सुंदर धारणा है, सभी के लिए शुभ भावना और प्रेम, इन चीजों पे ध्यान देंगे हम। संबंधों में प्रेम की कमी हमें भी डिस्टर्ब करेगी, मन को शांत करेगी, वाइब्रेशंस को भारी करेगी। सब जानते हैं, माताएं जानती हैं, घरों में अगर प्रेम की कमी होती है तो घर का माहौल कैसा भारी रहता है। एक दूसरे से दो लोग बात न कर रहे हों तो वाइब्रेशंस कैसे रहते हैं, और आपस में बहुत स्नेह हो, शुभ भावनाएं हो, एक दूसरे के लिए सहयोग हो तो वाइब्रेशंस कितने सुंदर रहते हैं। इन धारणाओं पर सभी बहुत ध्यान देंगे, ज्ञान का बल होगा तो योग श्रेष्ठ होगा, ज्ञान और योग का बल होगा तो धारणाएं सहज हो जाएंगी, तीनों का बल होगा तो सेवाएं स्वतः ही होंगी। सेवाएं बहुत ज्यादा भागदौड़ करने से सफल नहीं होती, साइलेंस पावर जिसके पास जितनी है, त्याग जिसके पास जितना है, ये धारणाएं जिसके पास जितनी है, उन्हें सेवाओं में भागदौड़ की जरूरत नहीं, उन्हें सेवाओं में ज्यादा धन खर्च करने की जरूरत नहीं, उनकी सेवाएं तो उनके पीछे पीछे परछाई की तरह आती हैं, क्योंकि देवकुल की आत्माओं को वाइब्रेशंस का ही आकर्षण होता है। आज बाबा ने कहा ना, बाबा सैपलिंग लगा रहा है, कौन से झाड़ के, देवी, और उस सैपलिंग में देवी देवता धर्म की आत्माएं स्वतः ही आती जा रही हैं, आती जाएंगी। हमें केवल श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर उन्हें बाबा की ओर आकर्षित करना है, हमारा ये काम है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा आकर्षक वाइब्रेशंस बनाना और सकाश देना। सभी अपने अपने स्थूल कार्यों के साथ, यज्ञ सेवा के साथ ये बात भी बहुत ध्यान दें। तो सभी करेंगे, अब स्वमान ले लेते हैं इस बार के लिए। बोलो कौन से स्वमान बहुत अच्छे रहेंगे। स्वमान लेने का लक्ष्य होता है हमारा चित्त शांत रहे, उसके बल से हमारा योग अच्छा रहे, हमारे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे आ जाएं, हमारी कुछ साधनाएं चालू रहें। बोलो तीन स्वमान बोलेंगे। मैं कर्मेंद्रिय जीत हूं, बहुत अच्छी बात बताई। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, कर्मेंद्रिय जीत हूं। सभी करेंगे, हैं माताएं करेंगे ना, ऐसे नहीं सुनने आ गए, वे सुनना तो बहुत अच्छा लगता ही है, करना है। ये हमारा एक ग्रुप करने वालों का है, केवल सुनने वालों का नहीं, करना है। दूसरा स्वमान माताएं बताएंगी, बीच वाली माताएं बताओ, जोर से थोड़ा बोलेंगे, हाथ उठा के, मैं विश्व कल्याणकारी, और बोलो। ये बहुत सुंदर स्वमान है, पर मैं ध्यान आपका एक दूसरी बात की ओर ले चलना चाहता हूं। मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, अपना देव कुल भी सामने आए और मैं महान हूं, देव कुल की पूजनीय, जिनके दर्शनों से ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी देव कुल की महान आत्मा हूं मैं। तीसरा, पीछे वाले भाई बताएं, पीछे वालों से पूछना जरा। ये अभ्यास हो गया, इसको भी लेते हैं। हाँ शक्ति भाई, आपके आसपास वाले बताएं तीसरा स्वमान, बोलो। मैं, जोर से बोलो, सर्वश्रेष्ठ, अच्छा, और बोलो, पवित्रता का अवतार हूं, ठीक है, ये सब के साथ मैं पूर्वज हूं। तो स्वमान हमें ऊंचाइयों पर ले चलता है। मैं पूर्वज हूँ तो छोटी छोटी बातें समाप्त होने लगेंगी। पूर्वज माना बड़े, लौकिक में भी बड़े छोटी छोटी बातों से मुक्त रहेंगे। बड़े हो गए 80 साल के, फिर बच्चों वाली बात तो नहीं करेंगे। खाना भी सबसे पीछे मिले तो शांति से बैठे रहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे जल्दी दो मुझे सबसे पहले, बच्चे तो बनने से पहले ही आ जाएंगे, पहले मुझे दो, भूख लगी है बहुत ज्यादा। तो बुजुर्ग होने पर सब कुछ बड़ा हो जाता है। तो हम पूर्वज हैं, इसकी फीलिंग, इसको स्वीकार करना, सचमुच हम बड़े हैं। पूर्वज के साथ ये शब्द ले लें, हम बड़े हैं, छोटे नहीं। तो बड़ों का जैसे भाव छोटों के प्रति रहता है, वैसा ही भाव हमारा भी सबके लिए हो जाए, सबका कल्याण, सब सुखी हो जाएं। इससे मैंपन भी छूट जाएगा और कल्याण की भावना भी बहुत बढ़ जाएगी। अब अभ्यास, एक अभ्यास तो यही जो बताया, मैं इस देह में अवतरित आत्मा हूँ, अवतार हूँ। संकल्प देंगे, ये बहुत अच्छा तरीका कि सवेरे उठते ही हम ये प्रैक्टिस अपने को दे दें, मैं तो शांति की अवतार हूँ, मैंने इस संसार में शांति स्थापना के लिए इस देह में अवतार लिया है, मैं तो पवित्रता की अवतार हूँ, परम पवित्र हूँ, मैं पवित्र आत्मा इस तन में आ गई हूँ इस संसार में पवित्रता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। ऐसा चिंतन बहुत आवश्यक है। तो मैं अवतार हूँ और मेरे सिर पर कौन है? बाबा सर्वशक्तिवान छत्र छाया है। ये दो हमारे अभ्यास रहेंगे। हम एक बार और मिलेंगे जल्दी हफ्ते में। तब तक बहुत सिंसियरली, ऑनेस्टली ये सब अभ्यास करते रहना है तो बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख। और इस सुख को हमें अधिकार से अपने अंदर भरते चलना है। ओम शांति। अब गीत पूरा बजा देना भाई। चलो, मैं इस देह में अवतार हूँ, परम धाम से आकर भ्रकुटी सिंहासन पर बैठ गई हूँ, पवित्रता का अवतार हूँ, बाबा मेरे सिर के ऊपर है और मुझसे पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं।